है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है क्लासरूम।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको हमारे प्रोग्राम क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी जिस तरह क्लासरूम में मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, इसी तरह हमारे प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। इन यूनिट्स में इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल हम कुरान पाक के बारे में भी सुनेंगे, इंशाल्लाह नाज शरीफ भी सुनेंगे, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह सबक भी पढ़ेंगे। सबक के बाद इंशाल्लाह मुख्तलिफ सवालात का सिलसिला होता है, सवालात में जवाबात देने का सिलसिला होता है। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सवालात के जवाबात देता है और कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम के स्टार्ट में हम बच्चों का तारुफ ले लेते हैं कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में क्लासरूम में कौन कौन है। जी, आपका नाम?
मोहम्मद
अहमद रजा अत्तारी। माशाल्लाह। जी, आपका नाम?
मोहम्मद अनस रजा अत्तारी।
मोहम्मद अनस रजा अत्तारी भी हमारे साथ हैं, अहमद रजा भी हैं। देखते हैं यहाँ कौन है हमारे साथ।
मोहम्मद अदील रजा अत्तारी।
मोहम्मद अदील रजा अत्तारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम?
मोहम्मद उवैस रजा अत्तारी।
मोहम्मद उवैस रजा अत्तारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक हमारे साथ सनाखा भी होते हैं जो हमें कलाम सुनाते हैं। जी, आपका नाम?
मोहम्मद उस्मान अत्तारी।
मोहम्मद उस्मान अत्तारी हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह इनसे हम कलाम भी सुनेंगे, झूम झूम कर सुनेंगे, मगर अभी नहीं। अभी वक्त हुआ है पहले यूनिट का, और पहला यूनिट है हमारा कौन सा है?
कुरान एक नॉलेज
की तरफ बढ़ने से पहले हम दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मुझ पर शौक और मोहब्बत की वजह से, किस वजह से?
शौक और मोहब्बत
की वजह से। जिसने दिन और रात में मुझ पर शौक और मोहब्बत की वजह से तीन तीन मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मर्तबा?
तीन तीन।
थ्री टाइम्स। अल्लाह पाक पर हक है कि उसके उस दिन और रात के गुनाह माफ फरमा दे। प्यारे बच्चों, सिर्फ तीन मर्तबा, और किस वजह से पढ़ना है? मोहब्बत और
शौक
की वजह से। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत के साथ शौक से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद पाक पढ़ेंगे तो उसकी बरकतें ही कुछ और होंगी। तो नियत करें प्यारे बच्चों कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दिन भर में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की नियत करें।
जब तीन मरतबा
पढ़ने की इतनी सारी फजीलत है, इतनी अच्छी फजीलत है कि अल्लाह पाक उसके उस दिन और रात के गुनाह माफ़ फरमा दे, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो कितनी ज़्यादा फजीलतें मिलेंगी। अब तो इतना आसान है, अगर आप अपने हाथ में काउंटर रख लें, देखा है बच्चे भी अपने हाथ में काउंटर रखते हैं और तस्बीह पढ़ते हैं, उनको शौक भी होता है बड़ों को देख के, तो आप भी अपने हाथ में काउंटर रखें, जब हाथ में काउंटर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक भी मिल जाएगी। तो नियत करें कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे
इंशाल्लाह।
अब चलते हैं अपने पहले यूनिट की तरफ जिसका नाम है कुरान एक नॉलेज। जी, तो प्यारे बच्चों पहला यूनिट है कुरान एक नॉलेज, और कुरान एक नॉलेज में हम कुरान पाक में मौजूद कुछ चीजों के बारे में अनोखी बातें जानते हैं। तो देखते हैं कि आज हम किस चीज के बारे में जानेंगे। अल्लाह पाक की बहुत सारी मखलूक हैं, और हर मखलूक में कुछ ना कुछ खासियत हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, और हर जानवर की, हर जानदार की, हर मखलूक की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो देखते हैं कि आज हम किस मखलूक के बारे में जानेंगे। जी, आज हम जानेंगे किसके बारे में?
हाथी।
जी, आज हम जानेंगे हाथी के बारे में। किसके बारे में?
हाथी।
आज हम जानेंगे हाथी के बारे में। हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
एलिफेंट
एलिफेंट कहते हैं. अच्छा हाथी को इंग्लिश में तो एलिफेंट कहते हैं, अरबी में से क्या कहते हैं?
फील.
फील कहते हैं. क्या कहते हैं?
फील.
फील कहते हैं. हाथी का जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है, हमें हाथी का जिक्र कुरान पाक में मिलता है और इसका जिक्र किस नाम से है?
फील.
इस बड़े से नजर आने वाले जानवर को अल्लाह पाक ने बहुत सारी ताकत अता फरमाई है. हाथी बहुत ताकतवर जानवर है. आज जो हम जानेंगे वो हाथी के बारे में जानेंगे. हाथी की खाल जो है वो 1 से 1.5 इंच मोटी होती है, इसलिए हाथी के जिस्म पर जल्दी जख्म नहीं आता. हाथी के जिस्म पर जल्दी से जख्म नहीं आता और अल्लाह पाक की आता है कि उसको इतनी मोटी खाल अता फरमाई है जिसकी वजह से जख्म उसको जल्दी नहीं आता. हाथी को अल्लाह पाक ने 2 बड़े बड़े कान अता फरमाए. कान तो बहुत सारी मखलूक को अता फरमाए मगर हाथी के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं. और हाथी की जो नाक है ये एक लंबी सी सूंड होती है. हाथी को किस किसने देखा है? सब नहीं देखा है. तो ये जो इसकी सूंड होती है ये बड़ी ताकतवर होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इसी से ये सूंघता भी है. अपनी सूंड से बहुत भारी भारी चीज़ें भी उठा सकता है. हाथी घास सब्जियां और फल वगैरह खाता है. क्या खाता है हाथी? घास भी खाता है, सब्जियां भी खाता है और फल वगैरह ये हाथी खाता है. जैसे जानवरों के नॉर्मल दांत होते हैं ना, तो हाथी के भी दांत हैं मगर इसके अलावा हाथी के पास 2 बड़े बड़े और दांत होते हैं मगर वो खाने में यूज़ नहीं होते. खाने के लिए नॉर्मल दांत हैं हाथी के पास मगर 2 दांत इसके जो हैं वो एक कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और. एक मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और. तो वो दिखाने वाले दांत होते हैं बड़े बड़े और वो उससे खाते नहीं मगर वो बहुत कीमती दांत होते हैं. कहते हैं कि उससे बहुत सारी चीज़ें बनती भी हैं और बहुत सारे कामों में वो 2 बड़े बड़े दांत आते हैं. प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में बादशाह जो हुआ करते थे, किंग जो हुआ करते थे, वो हाथी पर सफ़र किया करते थे और ये मतलब एक शाही सवारी कह लें, ये हाथी एक शाही सवारी हुआ करती थी. बड़े बड़े बादशाह जो हुआ करते थे वो हाथी पर बैठ के सफ़र किया करते थे मगर आजकल के ज़माने में तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और लग्जरीस कार होती हैं, उसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं मगर पुराने ज़माने में जो है वो बादशाह जो हुआ करते थे वो किस पे सफ़र किया करते थे?
हाथी पे.
हाथी पर सफ़र किया करते थे. सुभान अल्लाह, जब कभी हाथी देखने का मौका मिले तो अल्लाह पाक की कुदरत पर सुभान अल्लाह कहें. प्यारे बच्चों, ये अल्लाह पाक की मखलूक है. जब भी कोई अजीब चीज़ देखें, कोई हैरत में डाल देने वाली चीज़ हम देखें तो हमें अल्लाह पाक की कुदरत पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहना चाहिए कि पाक है परवरदिगार, मौला तू ही इन चीज़ों को, इन सारे मखलूक को पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, इनमें जान डालने वाला है, इनमें ताकत देने वाला है, इनके अंदर ये खासियत देने वाला है. अल्लाह पाक ही है जो हाथी को ताकतवर बनाने वाला है और हाथी को इतनी सारी क्वालिटीज़ देने वाला है. जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला यूनिट जिसका नाम था कुरान एक नॉलेज. में आज हमने हाथी के बारे में जाना. हाथी का जिक्र कुरान पाक में मिलता है और इसे अरबी में क्या कहते हैं और इसकी बहुत सारी खसूसियात आज के इस यूनिट में हमने जानी. अब चलते हैं अपने दूसरे यूनिट की तरफ जिसका नाम है आए
नाच पढ़े.
जी तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है दूसरे यूनिट का. वो भी बहुत ज़बरदस्त यूनिट है जिसमें हम नात सुनते हैं, हम जिसमें कलाम सुनते हैं और झूम झूम के सुनते हैं और इसका फिर खुलासा भी आखिर में हम जानते हैं, इसकी मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी समझने की कोशिश करते हैं. तो चलते हैं अपने नात ख्वाह की तरफ और देखते हैं कि आज हमें ये कौन सा कलाम सुना रहे हैं.
मेरे नबी सल्ले अला, प्यारे नबी सल्ले अला, मेरे नबी सल्ले अला, प्यारे नबी सल्ले अला, दर पे बुला लो हमको भी, प्यारे नबी सल्ले अला, मिटते हैं जहां भर के आलान मदीने में, मिटते हैं जगह भर के जी. रो रो के
माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम हमने सुना। और ये कलाम तो आपने सुना कि हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया का लिखा हुआ कलाम है। तो अब इसकी कुछ मुश्किल वर्ड्स और इसका खुलासा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हुआ कि मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में। आलाम की मीनिंग कौन बताएगा? किसी के जहन में हो, पहले सुनी हो। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में। आलाम की मीनिंग है दर्द और तकलीफ, दुख होते हैं, तकलीफ़ होते हैं। तो ये सारे मदीने पाक में जाकर तो फिर दर्द और तकलीफ़ का एहसास ही नहीं है, फिर तो भूल ही जाता है बंदा, खुशी के मारे झूम झूम रहा होता है कि मैं मदीने शरीफ में आ गया। तो मदीने शरीफ जाकर तो दर्द, तकलीफ़ और आलाम जो है ये दूर हो जाते हैं। तो मिटते हैं जहाँ भर के आलाम मदीने में। अच्छा, आलाम जो है ना ये अलम की जमा है। अलम कहते हैं दर्द को, तकलीफ़। तो ये आलाम जो है ये दर्द, मतलब बहुत सारे दर्द, बहुत सारी तकलीफ़ें ये मदीने पाक जाकर मिट जाती हैं। एक और जो शेर था उसमें जो आखिरी मक्ता था जिसमें अमीर अहले सुन्नत ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल फरमाया, अत्तार पे अब ऐसा एक काश करम हो जाए, मक्के में सहर गुजरे और शाम मदीने में। तो ये सहर और शाम से क्या मुराद है? सुबह
और शाम।
सुबह और शाम, तो सहर कहते हैं सुबह को। सहर कहते सुबह को कहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, इस कलाम में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी को कोई भी तकलीफ़ हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर मदीना शरीफ में हाजिर हो जाएं, कि यही वो मुबारक जगह है जहाँ सबके दुख तकलीफ़ें दूर हो जाया करती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके सबके काम बन जाया करते हैं। क्योंकि मदीने पाक में हर कदम पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें हैं और करम होता है, इसलिए कोई भी मदीने में नाकाम नहीं होता। क्या बात है मदीने की। और आखिरी शेर में एक अर्ज़ की है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके करम से बहुत कुछ मिला। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके करम से बहुत कुछ मिला, अब ये करम भी फरमा दें कि दिन और रात मक्के मदीने में गुजरें। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ख्वाहिश है ना, दिन रात मक्के मदीने में गुजरें। आए हम मिल के एक और मरतबा ये शेर पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया ना कि अमीर अहले सुन्नत क्या दुआ फरमा रहे हैं कि दिन और रात आपके करम से मक्के मदीने में गुजरे। एक और मरतबा मिलके पढ़ते हैं ये शेर।
अत्तार पे अब ऐसा एक काश करम हो जाए, अत्तार जाए अतार पे अब ऐसा काश कर्म हो जाए मक्के में सहर गुजरे मक्के में सहर गुजरे तो शाम मदीने में मेरे नबी सल्ले अला यारे नबी सल्ले
क्या बात है अमीर सुन्नत की और क्या ही बात है हमारे मीठे मदीने की। अल्लाह पाक जल्द जल्द हम सबको मीठे मदीने की बाद अब्बाजोक हाजी नसीब फरमाए। तो ये था हमारा दूसरा यूनिट जिसमें हमने कलाम सुना और उसको समझने की कोशिश भी की और उसकी मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानी। अब चलते अपने तीसरे यूनिट की तरफ जिसका नाम है आज का
सबक।
वक्त हुआ है यूनिट आज के सबक का और आज के सबक में हम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग का जो है आज थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज है। जिस तरह हम आज के सबक में सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसको हम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। इसका सिलसिला कुछ यूँ करते हैं कि सवालात आप पढ़ लें और ये कि जवाब मैं आपको समझा दूंगा ताकि समझ में भी आ जाए और आप की रीडिंग भी हो जाए। सही है? सवालात आप पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह जवाबात के जरिए हम उसको सवालात के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम पढ़ेंगे इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा दो से। अगर आपके पास ये किताब है तो जल्दी जल्दी निकाल लें। इस किताब के पेज नंबर 68 से पढ़ेंगे। इस किताब के पेज नंबर 68 से पढ़ेंगे। तो इस किताब के पेज नंबर 68 को निकाल लें। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। www.dawatislami.net पर आपको ये किताब मुयस्सर होगी। आप वहाँ जाकर ये किताब निकाल सकते हैं और इससे रीडिंग कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मकतबतुल मदीना से हदीयतन ये किताब भी हासिल कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों आज के जो सबक की हेडिंग है वो है वालदेन का अदब और एहतराम। किसका अदब और एहतराम?
वालदेन का अदब और एहतराम।
वालदेन का अदब और एहतराम। तो शुरू करते हैं मेरे सीधे हाथ से। आप सवाल की रीडिंग करें इंशाल्लाह फिर जवाब को भी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
अल्लाह ताला ने वालदेन के साथ किस तरह के सुलूक का हुक्म फरमाया?
जी सवाल है अल्लाह पाक ने वालदेन के साथ किस तरह के सुलूक का हुक्म फरमाया। इसके जवाब की रीडिंग करते हैं। अगर आपने किताबें खोली होंगी तो आपके सामने है अल्लाह पाक ने वालदेन के साथ भलाई का हुक्म फरमाया। क्या हुक्म फरमाया?
अल्लाह
पाक ने वालदेन के साथ भलाई का हुक्म फरमाया। चुनाचा सूरतुल अनकबूत में इरशाद फरमाता है तर्जुमा कंजुल ईमान और हमने आदमी को ताकीद की अपने माँ बाप के साथ भलाई की। तो प्यारे बच्चों हमें अपने वालदेन के साथ भलाई का हुक्म फरमाया। वालदेन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें। जब भी वालदेन के साथ आमना सामना होता है वालदेन किसी चीज़ का हमें हुक्म देते हैं तो हमें फौरन उनकी फरमा बरदारी करनी चाहिए। वालदेन को मना नहीं करना चाहिए, झिड़कना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें वालदेन का अदब और एहतराम करना चाहिए, उनके साथ भलाई का सलूक करना चाहिए। और वालदेन का क्या करना है? अदब और एहतराम करना है। जी दूसरा सवाल।
हदीस पाक की रोशनी में वालदेन के अदब और एहतराम की फजीलत बताइए।
जी हदीस पाक की रोशनी में वालदेन के अदब और एहतराम की फजीलत बताएं।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखती है इसके लिए अल्लाह पाक हर नज़र के बदले में एक मकबूल हज का सवाब तहरीर फरमा देता है।
क्या बात है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखती है। सिर्फ देखना है प्यार और मोहब्बत से अपने वालदेन को, मोहब्बत भरी नज़र से देखती है इसके लिए अल्लाह पाक हर नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब तहरीर फरमा देता है। कितना बड़ा सवाब है मकबूल हज का सवाब। मकबूल हज का सवाब कितना ज़्यादा होता है ना। तो अल्लाह पाक सिर्फ एक मोहब्बत भरी नज़र से देखने का इतना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो हम जब वालदेन का अदब एहतराम करेंगे, इनकी फरमा बरदारी करेंगे, इनका दिल खुश करेंगे, इनकी दुआएँ लेंगे तो उसकी तो क्या ही बात है। सिर्फ मोहब्बत भरी नज़र से देखने की इतनी प्यारी फजीलत है। अल्लाह पाक हम सबको वालदेन का अदब एहतराम करना नसीब फरमाए। जी
माँ बाप के लिए कौन सी दुआ करते रहना चाहिए?
जी सवाल इन्होंने रीड किया माँ बाप के लिए कौन सी दुआ करते रहना चाहिए। माँ बाप के लिए ये दुआ करते रहना चाहिए जो अरबी में दुआ लिखी हुई हो सके तो आप याद भी कर लें। मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर इंशाल्लाह एक मरतबा मिल के पढ़ेंगे भी। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब एक मरतबा मिल के पढ़ते हैं रब्बिर हम हुमा
कमा
रब्बयानी
صغیرو.
اب اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں تاکہ ہمیں بتا تو ہو کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے کیا دعا کی. ترجمہ ہے, اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. جی تو پیارے بچوں, ہمیں یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور ہم اکثر اوقات اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لینا چاہیے. تو پیارے بچوں, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے. اب چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف.
ماں باپ سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے؟
جی ماں باپ سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے, بہت اہم سوال ہے. ہمیں گفتگو نہیں کرنا آتی ماں باپ سے, ہم ماں باپ سے اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جیسے ہم ماں باپ سے لڑ رہے ہیں. تو ہمیں کس طریقے سے ماں باپ سے گفتگو کرنی چاہیے, بات کس طریقے سے کرنا چاہیے, کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے, اس آج کے چیپٹر میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جی جواب,
ماں باپ سے گفتگو کرتے وقت آواز دھیمی اور نظریں نیچی رکھنی چاہیے, ان کی موجودگی میں اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے.
جی ہمیں پتا چلا کہ ماں باپ سے گفتگو کرتے وقت آواز دھیمی اور نظریں نیچی رکھنی چاہیے, یہ ایک ادب والا انداز ہے. ان کی موجودگی میں اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ گھر میں موجود ہیں, اگر یہ آفس میں موجود ہیں, اگر یہ جہاں ہم موجود ہیں وہاں یہ موجود ہیں, تو ہمیں آہستہ آواز سے بات کرنی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے, ان سے گفتگو نرم اور بالکل آہستہ آواز سے کرنی چاہیے, اور جب یہ موجود ہوں کہیں پر ان کی موجودگی میں اپنی آواز کو کم رکھنا چاہیے. جی تو پیارے بچوں, جس طرح سے ہم نے آج کے اس چیپٹر میں سنا کہ والدین کے ساتھ ہمیں ہمیشہ بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے, اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی کبھی والدین ہمیں بلاتے ہیں اپنی طرف آواز دیتے ہیں تو بچہ جواب دیتا ہے, جی جی کیا ہوا, آ رہا ہوں, آ تو رہا ہوں, مسئلہ کیا ہے, بولو نا, اس طریقے سے بعض اوقات بچے جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ والدین کے ساتھ ادب والا انداز رکھیں. جی ابو جان, جی امی جان, ابھی آیا, ایک منٹ میں آیا, اور آواز بالکل دھیمی ہو. والدین کے ساتھ اس طرح کا جب آپ سلوک کریں گے, جب والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ والدین کی دل سے دعا نکلے گی, اور اگر والدین کی دل سے دعا نکلی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو دنیا بھی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اچھی ہو اور آخرت اچھی ہو, تو ہمیشہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں, نرمی سے پیش آئیں, پیار سے پیش آئیں. ہم نے تو سنا صرف والدین کو پیار محبت سے دیکھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو سارے پیارے بچوں جو کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب نیت کریں کہ انشاءاللہ والدین کے ساتھ ہم ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے, ان کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, ان کی دعائیں لیں گے, ان کو پیار اور محبت سے دیکھیں گے, ان سے دھیمی آواز سے گفتگو کریں گے, ان سے بے ادبی نہیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا ہمیں دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق, جس میں ہم نے والدین کا ادب اور احترام کے بارے میں سنا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف, جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. جی تو پیارے بچوں, وقت ہوا ہے بچوں کے سوالات کا. اب ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں, ہماری سیدھی طرف جو ہیں وہ ٹیم اے کہہ رہے ہیں اس کو, اور دوسری طرف جو ہیں وہ ٹیم بی ہے. دیکھتے ہیں ٹیم اے زیادہ جوابات درست دیتی ہیں یا ٹیم بی. مقابلہ ہے, سوالات ہیں, بہت آسان ہیں. اب یہ آسان میرے لیے تو ہیں, اب آپ کے لیے ہیں یا نہیں یہ پتہ چلے گا سوالات کے بعد. پہلا سوال میں کرتا ہوں ٹیم اے سے, مشہور کتاب فیضان سنت کس نے لکھی ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے. ان کا جواب درست ہے, ٹیم اے نے پہلے سوال کا جواب درست دے دیا ہے. اب ٹیم بی سے, غیبت کے موضوع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کون سی مشہور کتاب ہے؟ چلیں یہ سوال پھر ہم کیا کریں, ٹیم اے سے لے لیں. ٹیم اے کا ہاتھ اٹھ رہا ہے.
غیبت کی تباہ کاریاں.
چلیں اب ہے سوال ٹیم اے سے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟
پیر شریف کے دن.
پیر شریف کے دن, ان کا جواب درست ہے. اب چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟
12 ربیع الاول کو پیر کے دن.
ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. سوال تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ रबी उल अव्वल के महीने में हुई। 12 रबी उल अव्वल की 12 तारीख को विलादत हुई, रबी उल अव्वल के महीने में हुई। आपका जवाब भी दुरुस्त है जी। तो प्यारे बच्चों, बच्चों से सवालात का मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर इल्म दीन हासिल करने का शौक और जज्बा पैदा हो, ताकि उनके पास मालूमात हो, मालूमात होगी तो जवाब दे सकेंगे। तो ये कंपटीशन कराने का मकसद ये नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाएं, किसी को हराएं तो किसी को जिताएं। मकसद ये होता है कि हम लोग इल्म दीन हासिल करें, सवालात का हमें इल्म हो, ताकि कभी भी ऐसा मौका आए सवालात का तो हम जवाब दे सकें और हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो, हम अमल भी कर सकें। बहुत सारे इल्म दीन ऐसे होते हैं जिनका सीखना हम पर बहुत ज़रूरी होता है और बेसिक नॉलेज होती है। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल जो है, इसकी कोशिश यही होती है कि आप तक इल्म दीन पहुँचाए, बच्चों तक इल्म दीन पहुँचाए, बच्चों को और बहुत सारे फजूलियात से बचाकर, बहुत सारी बुरी चीज़ों से बचाकर, जिनको देखना हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है, उन चीज़ों से बचाकर बच्चों को इल्म दीन की तरफ लाएं, बच्चों को नात शरीफ की तरफ लाएं, बच्चों को कुरान पाक की तिलावत की शौक की तरफ लेके आएँ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रोग्राम क्लासरूम। जैसा कि आपने देखा, क्लासरूम में हमने कुरान पाक में मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं, जिसमें से हम आज हमने हाथी के बारे में सुना, फिर हमने बहुत ही प्यारा कलाम भी सुना, आज के सबक को रीड भी किया और इससे कुछ सबक भी हासिल किया, फिर हमने बच्चों से सवालात भी किए और बच्चों ने उनके जवाबात भी दिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहरा लेते हैं कि हमारा मदनी मकसद क्या है।
मुझे
अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल,
हमारा मदनी चैनल।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
है आज का सबक और बच्चों के सवालात, क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम।